نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بالظلم واهلها غافلون یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کرے جبکہ وہاں رہنے والے غافل ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت 133 ہے۔ آج ہم اس کی روشنی میں غفلت کا علاج دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک ہم نے مختلف چیزوں سے غفلت دیکھی تھی، مثلا دین کے علم سے غفلت ہے، قرآن سے غفلت ہے ہمارے کلچر میں، پھر ہم اجر اور ثواب کو نہیں جانتے، اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں ہم تھوڑی سی اپنی نیت بدل لیں تو ہمارا عام کام بھی عبادت بن سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ہم لوگ صفائی کرتے ہیں گھر کی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو اسی طرح سے نیت کے فرق کے ساتھ ہمارا وہ کام جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم اپنی زبان کے بہت زیادہ بے جا استعمال سے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں ہمیں رکنا چاہیے اور کہاں بولنا چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ گاڑی چلانے والا، اگر اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ گاڑی روکنی کا ہے، تو ہر دو منٹ کے بعد اس کا کسی نہ کسی سے ٹکراؤ ہوگا نا۔ ہم زبان کے ٹکراؤ سے نہیں ڈرتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ایک تو دل خراب ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ قیامت کے دن نام اعمال خراب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری نیکیاں انسان کی جو ہیں وہ زبان کی کھیتی کتر لے گی، یعنی بڑی بڑی تہجدیں، بڑی بڑی نمازیں، بڑے بڑے روزے قیامت کے دن نہیں دکھیں گے، تو پتہ کیا چلے گا کہ اس کی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح کی غفلتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مثلا اگر آپ میڈیکل کی اصطلاح میں کہیں کہ مریض ہو تو بیمار، لیکن اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھیں، تو مرض زیادہ بڑھے گا نا۔ اگر شوگر پیشنٹ خود کو پیشنٹ نہیں سمجھتا اور پھر بد پرہیزی پہ بد پرہیزی کرتا رہتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دن بہ دن اس کی شوگر بڑھے گی۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ان غفلتوں سے نکلنے کے علاج دیکھیں گے۔ اور یہاں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ دوا ڈاکٹر دے گا، کھانا مریض کو ہی پڑے گی۔ گھر میں 10 قسم کی آپ دوائیاں خرید لائیں، اس سے کوئی صحت نہیں ہوگی۔ اس کے صحت کے لیے شرط ہے کہ آپ دوا کھائیں۔ تو بالکل آج جو باتیں میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گی، بتانے سے کسی کو شفا نہیں ملنی، ان سب کو آپ نے میں نے اپنے اوپر لینا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیاوی ڈاکٹرز کے پاس ہم کتنے پیسے لگا کر، کتنی ایفرٹ سے، کتنی محنتوں کے ساتھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اللہ چاہے تو شفا ہو، کھائیں نہ کھائیں۔ تو یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو اصل میں ہمارے دل کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں، ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور غفلت کا علاج سب سے پہلی تو بات ہے کہ شعور ہے، آپ اس بات کا شعور رکھیں، میں بھی اس بات کا شعور رکھیں کہ ہاں میں غافل ہو سکتی ہوں۔ آپ دیکھیے جو بندہ خود کو مانتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں، وہ علاج نہیں کرے گا۔ آج بہت ساری چیزوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج امت مسلمہ کا کہ شعور کی کمی ہے۔ ہم غلط کام کر کے بھی اتنا اکڑتے ہیں جیسے لوگ ٹھیک کام کر کے بھی اتنا نہیں اکڑتے، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی۔ مثلا اگر کسی نے کسی کو ٹکر مار دی، وہ کہتا ہے تم نے ادھر گاڑی کھڑی کیوں کی تھی، اچھا جی تمہارے پاؤں پہ میرا پاؤں آیا ہے تو میرا قصور نہیں تمہارا کہ تم نے ادھر پاؤں رکھا کیوں تھا۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو اپنے ارد گرد، اپنے حالات، اپنی ذات پہ، اور یقین کریں جس کو اپنی ذات کی فکر لگ گئی اس کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ مانیں، اس بات کا شعور رکھیں کہ میں غافل ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر ہی آپ کو کسی نہ کسی تکلیف کے بارے میں وہ بتائے گا نا۔ تو انسان کو غفلت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی علم والے کے ساتھ جائے، بات کرے، کچھ سیکھے، قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، کسی سے یہ بات پوچھے کہ بتاؤ کہ میں کہاں غافل ہوں، میری زندگی میں کمی کہاں پہ ہے۔ جب آپ یہ دو تین کام کر جاتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ حد تک امید ہے کہ انسان اپنی غفلتوں پہ قابو پا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو نقصان غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کا میرا، اس کا کبھی بندے کو افسوس کم نہیں ہوتا۔ ہائے میں نے تھوڑا سا ادھر منہ کیا، دودھ ابل گیا، ہائے دو منٹ ادھر گئی، روٹی جل گئی، ہائے یہ ایسے ذرا ادھر ہوئی، بچہ گر گیا۔ یاد رکھیے کہ غفلت کا اچانک نقصان ہوتا ہے، جیسے ماں غافل بچہ گر گیا۔ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک ماں تھی تو وہ چھوٹے بچے کو باتھ روم میں نہلا رہی تھی ٹب میں، اور اتنے میں اس کو آواز آئی اپنے دوسرے بچوں کی، جو دو بچے چھت پہ کھیل رہے تھے۔ ماں آواز سن کر بھاگی ہے، تو کیا تھا کہ چھت پہ کھیلتے ہوئے ایک بچہ نیچے گرا، وہ نیچے گرا تو جو دوسرا بچہ تھا वो उसको बचाने के लिए वो भी नीचे गिर गया। माँ उनकी आवाज़ सुन के ऊपर आई है, वो दोनों बच्चे नीचे जाके ख़त्म हो चुके हैं। जब वापस आई तो तीसरे को वो टब में छोड़ चुकी थी, वो भी जा चुका है। ये वाक़या हुआ था जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे। अब ये बताइए, गफलत है ना, शऊर को कायम रखना चाहिए। एक इंसान की ज़िंदगी में जब भी कभी कोई ऐसा वक्त आता है कि जिस वक़्त कोई खिलाफे अकल, कोई खिलाफे तवक्को बात हो जाए, तो थोड़े से अपने हवास को कायम रखना चाहिए। कुछ लोगों में इस चीज़ की बहुत कमी होती है कि वो एकदम हाइपर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और वो जो बीमार होता है या जिसको कोई परेशानी है उसको छोड़कर लोगों को दूसरे की पड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से याद रखें कि अपने दिल को अगर हम ये यकीन दिलाएं कि मेरी गफलत एक बहुत बड़े हादसे का ज़रिया बन सकती है। आप लोगों ने कभी हाईवेज़ पे या मोटरवेज़ पे ये जुमला सुना होगा कि जैसे इंग्लिश में वहाँ लिखा होता है कि टेक अ नैप, एक लम्हे की गफलत आपकी जान ले सकती है। यानी ड्राइवर है, उसको नींद आ चुकी है, तो कहता है कि ड्राइव ना करें बल्कि आप सो जाएं, क्योंकि आप जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी जल्दी आपको ले डूबे। तो फिर इंसान को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि वाकई मैं अगर गाफिल हुआ तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है जिससे मैं और आप आमतौर पर अपनी गफलत को दूर कर सकते हैं, वो जिक्र है। अल्लाह सुब्हान तआला सूरत अल आराफ आयत 205 में फरमाते हैं, वस्कुर रब्बका फी नफ्सिक, अपने रब को अपने दिल में याद किया करो। कैसे? तदर्रुम व खीफा, चुपके चुपके भी और आजजी के साथ, यानी अल्लाह के साथ आजजी के साथ, और वखीफा व दून अल जाहरी, और कभी चाहो तो ऊंची आवाज़ से भी कह दो, मिनल कौली बिल गदू भी वला साल। क्या मतलब है? कि अपने रब की याद अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ सुबह शाम पुकारो, वला तकु मिनल गाफिलिन, और गाफिलों में से ना हो जाओ। इससे क्या पता चलता है कि दिल पर शैतान का कब्जा होता है। जब इंसान गफलत पाता है तो शैतान उधर आता है। आप इसको अगर इमेजिनेशन में समझें, अल्लाह ताला हम सबके घरों को चोरों से, उचक्कों से महफूज रखे। लेकिन आप देखिए कि आपने भी सुना होगा कि जहाँ चोर आता है वो पहले उधर से इर्द गिर्द के रास्ते ढूंढ लेता है, फिर वो देखता है घर वाले कहाँ से जाते हैं, कौन सा रास्ता है, कोई चोर दरवाज़ा है, कोई खिड़की है, कोई ऐसी चीज़ है, ताकि अगर किसी सूरत में मुझे भागना पड़े तो मैं भागूंगा, वापसी का रास्ता है। इसी तरह शैतान जो है ना, ये हमारे दिल के इर्द गिर्द आता है, दिल के अंदर नहीं आ सकता। अगर आप किसी भी एक्सरे के अंदर दिल की तस्वीर देखें तो आप देखिए कि बाहर चेस्ट है, पसलियाँ जिसको कहते हैं, फिर उसके अंदर दिल है। दिल असल में अल्लाह की याद का एक जगह है। जब एक बंदा अल्लाह की याद करता रहता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ होता है ना, तो शैतान उसके सीने के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे यूँ सोचे कि ये घर है ना, तो ये घर दिल है, इसके अंदर अल्लाह की याद है, आप इस घर में जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का नाम है, नमाज है, दीन है, वट एवर। अब घर अंदर से सिक्योर्ड है, लेकिन चारों तरफ बाहर कोई घूम रहा है, कोई इधर से खिड़की देख रहा है, कोई इधर। इस दिल में, हमारे दिल के अंदर अल्लाह की याद रहती है ना, तो शैतान इसके बाहर घूमता है, अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि आप देखिए कि हम क्या पढ़ते हैं, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यानी उसके शर से पनाह में आते हैं जो दिलों में वसवसे डालता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एक इंसान जिक्र करता है ना तो शैतान वहां से भाग जाता है। ये ऐसे ही कि चोर बाहर फिर रहा है और घर के अंदर लाइट जल गई, तो उसको पता चल जाएगा घर वाला जाग रहा है, घर में कोई मौजूद है। और अगर वो शोर करे, ज़रा इधर उधर की बात हरकतें करे और अंदर से कोई आवाज़ ना आए, तो वो क्या समझेगा कि घर में कोई नहीं है। जब हम जिक्र करते हैं तो शैतान दूर भाग जाता है, और फरमाया जब एक इंसान जिक्र से गाफिल होता है तो शैतान दिल में आता है। और आप जानते हैं कि चोर घर के अंदर आ जाए तो वो घर का नक्शा बदल देगा, वो घर के अंदर आएगा, चीज़ें इकट्ठी करेगा, तोड़फोड़ करेगा। इसी तरह जब शैतान हमारे दिल के अंदर आ जाता है ना, तो हमारे अंदर के नक्शे बदल जाते हैं, हमारी ख्वाहिशें बदल जाती हैं, हमारी खुशी गम बदल जाती है, हमारा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, यानी अच्छे काम तो वो हमें फिर करने ही नहीं देता। उसको ये बड़ा एक मान होता है कि मैं इनसे जो चाहूँगा कराऊँगा। फिर जब वो हमारे दिल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है ना, तो हमें खुद भी अपने ऊपर बस नहीं होता। कभी आपने सुना होगा कि जी जहाज़ हाईजैक हो गया, हाईजैकर्स क्या करते हैं भला, जहाज़ में आकर पायलट को कंट्रोल में ले लेते हैं। जब पायलट को अपनी जान का ख़तरा होता है, फिर वो जो बात हाईजैकर कहता है वो वही काम करने लगता है। दिल को हाईजैक करता है शैतान। बिल्कुल आप देखिए ना कि आपके बच्चे हमारे घरों में आम तौर पे मुमी हालात में सब बातों का पता है, क्या अच्छा क्या बुरा, इसके बावजूद भी क्यों बुरे काम करता है इंसान। कभी आप सोचें, हमें नहीं पता कि नमाज़ पढ़नी फ़र्ज़ है, फिर भी कई लोगों की नमाज छूटती है। हमें पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कितनी कसरत से झूठ बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि जब हम अपने इल्म पे या जो बातें हम जानते हैं उस पे अमल नहीं करते ना, तो शैतान का काबू होता है। तो हमें अपनी गफलतों का मुकाबला करने के लिए जिक्र का हथियार लेना चाहिए। और जिक्र ऐसी है कि जैसे आप देखिए कि एक इंसान गफलत के घड़े में गिरा हुआ है और उसके अंदर से निकालने के लिए उसको एक रस्सी चाहिए होती है। आप देखिए, जब भी आपको कभी डर लग रहा है, आप उस वक्त पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी अल्लाह का नाम ले, आपको एकदम सुकून मिलेगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो जो जिक्र जिस वक्त आपको महसूस होता है ना, आप उस वक्त वो करें। एक ईमान वाले का दिल अल्लाह की याद से खाली नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये भी याद रखिए कि हर वक्त जुबान का जिक्र नहीं मुमकिन, कोशिश के बावजूद नहीं मुमकिन, लेकिन दिल का जिक्र तो हर वक्त है। जब जिस हाल में जहां भी अल्लाह को याद रखे, हत्ता के कहने वाले तो ये कहते हैं कि बंदा मोमिन से अगर कभी गुना भी हो जाए तो गुना करते हुए भी वो अल्लाह को याद कर रहा होता है कि मार बड़ी पड़नी है, अल्लाह को बुरा बड़ा लगना है, यानी नाफरमानी करके वो इंजॉय नहीं कर रहा होता। लोग इंजॉय कर रहे हैं, वो कहता नहीं मुझे मार पड़नी है, देखना मैं आके बैठ तो गया हूँ ना, इसकी सजा में अब मेरे पे कोई बीमारी आनी है, अब देखना मेरे बच्चे को चोट लगनी है, अब देखना है ना, फिर वो उसका वो उस गुनाह में लज्जत ही खत्म हो जाती है। तो क्या पता चला, हर वक्त अल्लाह की याद में बंदा रहे, जुबान से कर ले, दिल से तो करना ही है, और अमल से तो जिक्र हो गई। तो जितना जिक्र कसरत से हो, अब सवाल पैदा होता है कि हम जिक्र कैसे करें? क्या अल्लाह ताला ने जिक्र का भी कोई तरीका बताया? बिल्कुल, कुरान में आता है अल्लाह का वैसे जिक्र करो जैसे कि उसने तुमको हिदायत की, कमा हदाकुम के लफ्ज़ है। तो आप देखिए कि जिक्र अस्कार में सबसे बेहतरीन अस्कार वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद किए, अस्कार मसनूना उसको बोलते हैं। सुबह शाम के अस्कार मौजूद हैं, मेरा लिए 35 से ज़ायद दुआएँ हैं जो नबी सल्लम सुबह को और शाम को मांगते हैं। तो उसमें कुछ तो कुरान की आयतें, बस आयतुल कुर्सी है, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फलक, सूरतें हैं कुछ, और बहुत सारे अस्कार जो हैं वो हदीस के हैं। ठीक है, अब अगर आप ये अस्कार करना चाहती हैं और करने चाहिए, बड़ी जुर्रत की बात है कि एक बंदा सुबह शाम की दुआएं ना पढ़े और फिर भी सिक्योर रहे। आप देखिए कि जैसे लोग इंश्योरेंस करा के मुतमईन हो जाते हैं या सीट बेल्ट बांध के मुतमईन हो जाते हैं ना कि अब हमें कुछ नहीं होगा, जहाज़ में गए सीट बेल्ट बांध ली, जिक्र जो है ना ये हमारी सीट बेल्ट है। जिक्र करने के बाद बंदा अपने आप को इतना सिक्योर महसूस करता है, उसको इस तरह से महसूस होता है कि अब मैं किसी की हिफाजत में आ गया हूँ। और बिलीव मी कि अगर आपको आदत हो जाए ना सुबह शाम की दुआओं की, जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे ना, आपका वहम आएगा कि आज कुछ होना है इसीलिए ये भूला, और कहते हैं कि सबब फिर बन जाता है। पूरे शौर से सुबह उठ के खुद पढ़ें, छोटे छोटे बच्चे उनके सामने बैठ के खुद पढ़ें, आपको पढ़ता देखकर आप देखेंगे कि उनको आदत खुद ब खुद हो जाएगी, और अल्लाह के हुक्म से वक्त के साथ साथ वो खुद भी पढ़ने लगेंगे। कुछ दुआएं थी जो जिक्र अस्कार की अल्लाह के नबी अपने नवासों पे फूका करते थे, हजरत हसन और हुसैन को दम किया करते थे। फिर आप देखिए कि दूसरे अस्कार कौन से हैं मखसूस औकात के, बस आप देखिए घर से निकले, घर में आते हुए, फिर इसी तरह वॉशरूम में जाते हुए, शौहर बीवी का ताल्लुक है, छोटी छोटी बातें। हदीस से 700 से ज़ायद दुआएं हमें सिर्फ आम मौक़ों की मिल जाती हैं। जो बंदा अल्लाह के नबी के सुबह शाम रोज़ो शब से वाकिफ़ हो, उसको किसी और जिक्र अस्कार की नौबत ही नहीं आती। लोग पूछते हैं अच्छा ये दाना कितनी दफ़ा पढ़े, मसलन ये 1000 दफ़ा पढ़े, जैसे आप देखिए हमारे कल्चर में अमूमन लोग आयत करीमा पढ़ते हैं ना, कितनी दफ़ा पढ़ते हैं? 1.25 लाख पढ़ते हैं। अगर मैं पढ़ूं तो आप सुनिएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अच्छी खासी लंबी लाइन है। अब आप ज़रा सा मेरे साथ चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा एक रस्मी तरीके में और एक शौरी तरीके में फ़र्क बताऊं। 1.25 लाख यानी 1,25,000 दफ़ा इसको हम कुरान की अगर एक आयत समझ लें, हालांकि लंबी आयत है, कुरान में तो दो लफ्ज़ों की भी आयत है, वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र है ना, लेकिन ये एक तवील आयत है। पूरे कुरान में 6,000 से कुछ ऊपर आते हैं, कुछ तो 6,666 कहते हैं, कुछ कहते हैं नीचे काम में, चले 6,400 आयतें भी लगा दें। एक पूरा कुरान आप पढ़ते हैं ना तो 6,000 आयतें, और 1.25 लाख आयतों में कितने कुरान गए, ज़रा सा जमा तफरीक करके देखें। आप 1.25 लाख दफ़ा पढ़ते हैं तो उसको आप जाकर 6,000 पे ही डिवाइड करके देख लें, 25-30 कुरान पढ़ने के बराबर ये एक वजीफा होता है। मुझे बताइए क्या हमारा दीन इसका मुकल्लफ है? और आपसे खुद चुके ये बोझ उठाया नहीं जा रहा। एक पूरा कुरान तो हमने शायद रमज़ान के बाद पूरा पढ़ा ही नहीं कभी, और रमज़ान में भी पढ़ लें तो बड़ी बात है। एक कुरान पढ़ना इतना मुहाल, लेकिन वजीफे के नाम पे हम 25-30 कुरान पढ़ें, और फिर जब हमसे नहीं पढ़ा जाता हम अपनी दोस्तों से पढ़वाते हैं। अब वो वैसे नहीं पढ़ती तो फिर हम उनको खाना खिलाते हैं, फिर दही भल्ले बनाते हैं, फिर हम चाट बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, फिर वो पढ़ती हैं तो हम बैठ के किचन में उनके लिए चाय बना रहे होते हैं। इस्लाम ऐसे जिक्र की कोई अहमियत नहीं समझता। अब एक दफ़ा शऊर से कहें, देखिए हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में कितनी दफ़ा कहा, दाने कहाँ से आए, गुठलियाँ कहाँ से आई, गिन कौन रहा था, किसको पता है? शऊर से, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, पाक है तू मगर मैं ही जालिम हूँ, इन्नी कुंतु मिन जालिमीन, मैं जालिम हूँ। असल में ये एहसास है कि अल्लाह मेरे ऊपर ये जो तकलीफ़ आई है ना, ये मेरे किसी गुनाह की सज़ा है। मसाब देखने, एक शख्स गाड़ी तेज़ चला रहा है तो झटका पड़ेगा, चोट लग सकती है, तो वो क्या कहते हैं, हाँ अल्लाह कसूर मेरा है कि गाड़ी मैं तेज़ चला रहा था। ठीक है ना, जब अपने गुनाह के एहसास के साथ गफलत के पर्दों को चाक करके आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला सुन लेगा। अच्छा, आपकी दोस्त पढ़ रही हैं आपके लिए, बहन पढ़ रही, कज़न पढ़ रही, आप ज़रा से इस तर्जमे को देखिएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, इतनी बात तो ठीक है, नहीं है कोई मगर तू ही, इल्ला अंता यानी अल्लाह तेरे जैसा कोई नहीं, इन्नी कुंतु मैं हूँ जालिम, तो पढ़वा तो वो एक दोस्त रही है। अब आपकी दोस्त को पढ़ना क्या चाहिए कि अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं और ये मेरी दोस्त बड़ी जालिम है, इन्ना हाज मिन जालिमतुन या इन्ना मिन जालिमीन, तो आप अपनी दोस्त की तरफ से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो आपने तो अपने लिए पढ़ा, वो बेचारी समझी उसके लिए पढ़ा, आप तो अपने लिए पढ़ के, ये जिक्र नहीं है, ये मश्क है, ये सिर्फ एक दीन का एक रस्मी एडिशन है। याद रखिए कोई काम दुनिया का हम ऐसे रस्मी तरीके से नहीं करते जैसे आज अल्लाह हमें हिदायत दे, जैसे हमने दीन का काम पकड़ा हुआ है। हमें अपने दीन की ना समझ ना बूझ, और हम सिर्फ मस्जिद से मौलवी साहब को बुलाएंगे, कहेंगे 25 बच्चे ले आए, 30 बच्चे ले आओ, सपारा सपारा पढ़ के कुरान पढ़ दें, अब्बा जी की रूह को बख्शवाते हैं, और हम उनको जाते हुए एक एक बिरयानी की प्लेट पकड़ा देंगे और वो भी खुश हम भी खुश। मुझे बताइए अब्बा जी की रूह ने अगर इस तरह से बख्शे जाना था तो फिर क्या नबी को इतनी मेहनतों की ज़रूरत थी, इतनी तहज्जुदों की ज़रूरत थी? ये गफलत है आज हमारी, खुद नहीं पढ़ते, खुद नहीं सीखते, खुद अपनी जान को नहीं लगाते, जैसे पैसे के जोर पे दुनिया पे दूसरे काम करते हैं ना, इस तरह हम ये भी काम कराते हैं। ठीक है, तो जिक्र का मफहूम आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, आप खुद कहें। अच्छा लोग कहते क्या जिक्र करें ना, अक्सर लोग पूछते हैं, मैं कहती हूँ जिस वक्त अल्लाह तआला के साथ जैसी फीलिंग आई हो, कोई अच्छी चीज़ देखी तो सुभान अल्लाह, कोई अल्लाह की नेमत अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कोई गुनाह याद आ गया अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कोई अल्लाह की बड़ी कुदरत का ख्याल है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप देखिए कि एक ईमान वाले की तो पूरी डिक्शनरी अल्लाह ताला की मोहब्बत से, अल्लाह के नामों से जुड़ी होती है। उठते ही हम कहते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूत वहया, अल्लाह के नाम पे शुरू होते हैं। जब उठे वॉशरूम में जाने लगे बिस्मिल्लाह ही करके, फिर आप देखिए वॉशरूम में जाने की दुआ देखिए, निकलने की दुआ देखिए, आईना देखने की दुआ देखिए, हर दुआ में अल्लाह का नाम। घर से निकलें बिस्मिल्लाहि तवक्कलतुल्लाहि, तो आप अपने बच्चों को भी दुआएं सिखाएं। देखिए आज का एक बहुत ही ज़्यादा गफलत का पहलू यह है कि माएँ बच्चों को गिनती सिखा लेंगी, ABC सिखा लेंगी, कई उनको नशीद गाने याद हो जाते हैं, नहीं याद होती तो दुआएं याद नहीं होती, तो लिहाजा खुद भी पढ़ें दूसरों को भी पढ़ाएं। और जिक्र जो होता है ये याद के साथ है। दूसरी चीज़ जो गफलत का इलाज है वो दुआ है। जितना ज़्यादा आप दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला से उतनी गफलत दूर हो जाएगी। आप देखिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ हमारे तक पहुँचाई है जिसमें वाकई ये लफ्ज़ मौजूद है, मैं पढ़ती हूँ आप मेरे साथ दोहराएं, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो एक एक दुआ आपको याद भी हो जाएगी। और हम यहाँ भी इस नीयत से करेंगे कि इसमें जिस जिस चीज़ से पनाह मांगी गई है अल्लाह ताला हम सबको भी उससे पनाह दे। बाद में मैं आपको इंशाल्लाह इसका तर्जमा बताती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका मिनल अज्ज़ी वल कस्ली वल बुखली वल हरमी वल कुस्वती वल गफलती वल ज़िल्लती वल मस्कनती वाऊज़ुबिका من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء
والرياء
अब आप उंगली पे गिनिएगा हमने इन तीन लाइनों की दुआ में क्या कुछ मांगा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ आजिज़ी से। आजिज़ी क्या होती है कि दूसरे ने आपको आजिज़ी कर दिया, मजबूर हो गए, आप कहते मैं क्या करती फिर मैं मजबूर हो गई। तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मैं किसी के आगे आजिज़ ना बनूँ। फिर दूसरा देखिए सुस्ती से, कसल, आज आप देखिए सुस्ती है, दोपहर 12 बजे तक उठने को दिल ही नहीं कर रहा होता, कसल मंदी कितनी है। फिर तीसरी चीज़ देखिए वल बुखल, बुखल से, बुखल क्या होता है, ज़रूरियात पे भी ना लगाएं। इंसान के पास माल हो लेकिन वो ज़रूरियात पे ना लगाए या जिन जगहों पे लगाना चाहिए वहाँ भी ना लगाए। फिर वल हरमी, हरम की लफ्ज़ है ना, एक हा होता है, ये गोल हा है यानी हा से, और वो हरम क्या होता है, बुढ़ापा, कमज़ोरी, यानी एक ऐसा वक़्त कि जिसमें इंसान की वो कैफियत आ जाती है कि जिसमें बंदा दूसरों के ऊपर बोझ बन जाता है। आप ये कह लीजिए वल कसवती, और दिल की सख्ती। दिल की सख्ती क्या है, किसी का दुख सुन ले, दर्द सुन ले, आपको असर ही नहीं है, ज़रूरतमंद पड़े हुए हैं आप, अपनी अय्याशियों में पड़े हुए हैं। तो दिल की सख्ती क्या होती है कि अल्लाह की बात या बंदे की बात सुन के बंदे का दिल ना पिघले। फिर इसी तरह से वल गफलती, अब इसमें अगर आप सिर्फ इसको मौजू के अतबार से देखें तो आप ये भी दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल गफलती। उर्दू में मांग ले, अल्लाह मुझे गफलत से बचा, अल्लाह ताला मेरे दिल से गफलत को निकाल दे। वह ज़िल्लती, और ज़िल्लत से, वल मस्कनती, और मिस्कीनी से, वह आउज़ु बिका मिनल फ़क्री, अल्लाह मुझे फ़कीरी से बचा, यानी मैं इतना तंग दस्त हो जाऊँ कि किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। वल कुफ़री, और कुफर से, व शिरकी, और शिरक से, व निफ़ाक़ी, और निफ़ाक से, व सम्मती, व रिया, और दिखावे से, और दूसरों के अंदर शोहरत से पाने से। अब आप देखिए कितनी टोटल चीज़ें होंगी, नहीं आपने जी 14 चीज़ें सिर्फ 3 जुमलों की दुआ। क्या मैं और आप अपने लफ्ज़ों में इतनी दुआएं मांग सकते हैं? दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी की दुआएं मांगे। और इसके लिए मैं अक्सर साथियों को डेली बेस पे ये मदद करती हूँ, आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। पहली बात देखिए कि आपके पास बेहतरीन किस्म की दुआओं की बुक्स होनी चाहिए। देखिए आपको अपने बड़े भी याद होंगे, उनके 6-6, 8-8 बुक्स होती थी, सुबह उठ के एक दुआएं पढ़ ली, फिर दूसरी पढ़ ली, फिर तीसरी पढ़ी। दिन का एक बेशतर हिस्सा उनका सिर्फ कुरान और दुआएं पढ़ने में लगता था। वक्त के साथ कमी आ गई, अब तो इतना आसान हो गया, किताब आपके पास है, छोटी सी। आप देखिए कि जैसे सबसे खूबसूरत किताब जो मुझे लगता है दुआओं के नाते से, वो हिस्नुल मुस्लिम, इंग्लिश में सिटाडेल ऑफ बिलीवर है, उर्दू में उसका तर्जमा हिस्नुल मुस्लिम है, अरबी की बुक है, बेहतरीन दुआओं की बुक है ये। बल्कि आपको जो नमाज का हिस्सा हम करवाने वाले हैं, ये पूरा का पूरा उस बुक में है। पहले सोचा कि आपको पूरी बुक दिलवा दें, फिर मुझे लगा कि इतनी बड़ी बुक जो है ये, फिर इसका कुछ हिस्सा करें कुछ नहीं, तो बेहतर है पहले नमाज करें, और अल्लाह करेगा इसके बाद आपको वो बुक करवा कर जिसमें आपको सारी छोटी छोटी दुआएं याद करें। मैंने जब फर्स्ट टाइम उस बुक को पढ़ा तो मुझे पता चला कि नबी सल्लम सजदे में सुबहान रबी अल्लाह की जगह कुछ और भी पढ़ते थे। बचपन से एक ही लफ्ज़ सुना मैंने, सुभान रब्बी अल्ला, सुभान रब्बी अल्ला, सुभान रब्बी अल्ला, खड़े हो गए। हालांकि आप देखिए अल्लाह के नबी से इस बुक में शायद 6-7 दुआएं मौजूद हैं, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमति का इस्तगीस भी पढ़ते थे, फिर इसी तरह अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं, फिर इसी तरह से इसके अंदर अल्लाह से आजिज़ी, यानी कम अज़ कम 6-7 दुआएं, 2-2 लफ्ज़ों की दुआएं, रुकू की कितनी दुआएं। तशहुद में हम अमूमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, या रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, इसमें 8-10 खूबसूरत दुआएं जो अल्लाह के नबी पढ़ते थे। ठीक है, तो आप अपने लिए दुआओं की बुक्स का अहतमाम करें, ऑथेंटिक बुक्स लें। आप देखिए कि दूसरी किताबें जो दूसरों ने लिखी वो तो ऐसे ही, जैसे मैंने आपने उर्दू में दुआ मांग ली, अरब लोग जो अरबी में दुआ मांग लेते हैं, असल वो दुआएँ जो अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, और आप अपना एक मामूल बनाएं। कुरानी और मसनून दुआएँ बुक्स मौजूद हैं, फिर आप देखिए कि या का नस्ता इनके नाम पे इसकार की एक बुक मौजूद है, इसी तरह से बहुत सारी हैं। और आप में से जो सिस्टर सेल फ़ोन यूज़ करती हैं और उसमें नेट है, यानी आईफोन है या सैमसंग एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप चंद दुआओं के ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर लें। यकीन करें इतनी सहूलत, आप सुन भी सकते हैं, सिर्फ पढ़ भी सकते हैं, आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। मैं वॉक में जाऊँ जब तो मेरा पूरा एक साइकिल पूरा, यानी जैसे 1.25 घंटे की अगर वॉक है ना, तो एक दफ़ा पूरे कुरान की दुआएं चल के मसनून दुआएं ख़त्म हो रही होती हैं तो हम घर में पहुंचते हैं। मुझे खुद ही वक्त से पता चल जाता है अब कि हम कहाँ पहुंच गए, अभी कितना टाइम रह गया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सोने और जागने के अज़कार हैं, रात को सोने की तकरीबन 35 दुआएँ हैं जिसमें 4 बड़ी बड़ी सूरतें हैं, सूरत मुल्क, अल्लाह के नबी पढ़े बगैर सोते नहीं थे। फिर इसी तरह से आप देखिए सूरत सजदा, 21वें पारे में सूरत मौजूद है, सूरत ज़ुमर और सूरत बनी इसराइल, ये चार सूरतें अल्लाह के नबी पढ़ते थे। और वो अगर आप ऐप में से दुआओं सुनना शुरू करें, तकरीबन शुरू में 28 दुआएं हैं, वो साथ साथ पढ़ते रहे छोटी छोटी, जैसे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवा या रब्बि क़िनी अज़ाब अकमिन, ठीक है। अब ये पढ़ते पढ़ते आप आखिर में जब वो सूरतों पढ़ते आपको नींद आ जाती है, कई दफ़ा वो पूरा एंड तक रात के आपके सोने में चलता रहता है, जाग रहे हैं तो सुन लेते हैं, ना जागे हैं तो सूरह मुल्क उसके बाद सो जाते हैं, तो इससे आपकी रात की प्रोटेक्शन है। फिर आप देखें सुबह जब उठते हैं तो जागने के असकार हैं, ये सब बुक्स में भी मौजूद हैं और फ़ोन के ऐप्स के अंदर भी मौजूद हैं। आप सुबह उठे बिस्तर पे बैठे सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहि नुशूर, फिर उसके बाद आप देखिए आप उठे तो आखिरी रुकू जो है सूरत आले इमरान का, इन्ना फ़ी खल्क़ि समावाती वल अर्ज़, 10 आयतें हैं पूरी आखिर की। अल्लाह के नबी वो बग़ैर वुजू के अपने बिस्तर पे बैठते, अपनी आंखों से इस तरह करके जैसे नींद का खुमार दूर करते, फिर वो पढ़ते, फिर उसके बाद उठ के वॉशरूम में जाते। अब मैं आप अगर ये रोज़ पढ़ेंगे याद हो जाती, कोई मुश्किल नहीं। और वो पूरा रुकू दुआओं से भरा पड़ा है, कितना प्यारा उसमें एक नक्शा है कि अल्लज़ीन यस्कुरून अल्लाह क़ियामं वक़ूदं वला जुनूबी व यतफक्करून फ़ी खल्क़ि समावाती वल अर्ज़, यानी उस वक़्त वाकई वो समय इतना खूबसूरत होता है कि उस वक़्त उन दुआओं को पढ़ के ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला आपकी छत के ऊपर आ गए हैं, कुर्ब होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ज़िंदगी में गम खुशी हर एक के साथ है, ऐसे खूबसूरत दुआओं के मजमूए मौजूद हैं। औलाद के गम 15-20 दुआएँ हैं, शौहर की परेशानियाँ 8-10 दुआएं मौजूद हैं, आपको कोई बीमारियों ने घेर लिया, ज़िंदगी का हर रुख आपको दुआओं में नज़र आता है। तो दुआओं का इख्तमाम कीजिए, और आप ख़ुद भी करें और अपने बच्चों को भी साथ लें। घरों में इख्तमाम होना चाहिए, बात ना करें जब तक सलाम ना करें। बच्चे सुबह आते हैं ना स्कूल से, सबसे पहले उन्हें कि बेटा घर में आने की दुआ पढ़ो, निकल रहे सुबह लड़ते हुए जाते हैं हमारे और लड़ते हुए ही आते हैं, मारा धक्का थकी आते ही पता लग जाता है गुरीले आ गए हैं, और वो बस्ते पे एक माँ और रोब और क्या पकाया, बोलना ही नहीं आपने जब तक बच्चा दुआ ना पढ़े। आप देखिए कि तहजीब दिखती है ना, बच्चा बात करने से पहले सलाम करे। अब एक बच्चा भागा मम्मा मम्मा उसे ये कर दी जोश में, आप गए ना स्टॉप, असलाम कबल कर, पहले सलाम करो फिर भाई की शिकायत लगाना, वो सलाम करने में शिकायत का मूड ही ख़त्म हो जाना है। यकीन करें अगर हम अपने बच्चों की परवरिश सिर्फ अल्लाह के नबी की सुन्नतों को सामने रख के करें तो हमारे घरों में पुरसकून माहौल हो। मैं तो अक्सर सोचती हूँ इतना हाइपर क्यों है बच्चे, दो बच्चे घर में आ जाएं ऐसे लगता है छत आसमान एक बराबर हो रहा है, वजह क्या है कि हमने उनको इन दुआओं से दूर किया हुआ है। बहरहाल दुआओं का अहतमाम हर एक के लिए मौजूद है।